الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 3 میں سے، اور آیت نمبر 19 جو سورہ مائدہ کی ابھی پڑھی، تو اس کے معارف و مسائل ہم پڑھ رہے تھے، اور آخری تقریباً پیراگراف، بلکہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کے پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اس آیت کے اندر اہل کتاب کو مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس اب ہمارے رسول آ گئے جو تمہیں بیان کرتے ہیں ہماری باتیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یبین لکم علی فترت من الرسل، وہ آئے کس وقت کہ جبکہ ایک بہت لمبا رسولوں کے درمیان گیپ آ چکا تھا، انقطاع والا پیریڈ گزر چکا تھا، اس کے اینڈ پر ہم نے یہ والے رسول تمہارے پاس بھیجے، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں. بس اب آ گیا نا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی. فقط جاءکم بشیر و نذیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر قادر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے تحت ہم معارف و مسائل میں آخری بات یہ پڑھ رہے تھے کہ دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ایسے زمانے اور ایسے مقام میں ہوا ہے کہ جہاں علم اور دین کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر علم کی روشنی بھی موجود نہیں تھی، یعنی یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو تھوڑا تھوڑا بہت تو پتہ ہوتا تھا کہ ہاں ایسا ہوا ویسا ہوا، قوم لوط کے ساتھ ایسا ہوا، قوم سمود کے ساتھ ایسا ہوا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اور بنی اسرائیل کا بھی ان کو پتہ تھا کہ ہاں ایسے رسول آتے تھے فلسطین اور شام کے علاقے کے اندر. اتنا کچھ ان کو پتا تھا، لیکن بہت ہی سپرفیشل قسم کی ہائی لیول انفارمیشن ان کے پاس تھی. خود جو ہے وہ کتابی لوگ نہیں تھے، حالانکہ اس زمانے میں بھی کتابیں ہوا کرتی تھیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوا کرتے تھے. یہ پورا گریک فلسفی اور جو ہے وہ چائنیز سولائزیشن اور ایجپشن سولائزیشن اور رومن سولائزیشن، پرشن، یہ سب کی سب وہاں پہ موجود تھی دنیا میں، اور یہ بہت ہی چھوٹا سا ایریا ہے نا. اگر آپ پوری دنیا سے اس کو کمپیئر کریں تو یہ مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے، جو کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے آپ ہند کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور چائنا کی طرف بھی جا سکتے ہیں، تو یہ یعنی بہت چھوٹا سا ایریا نظر آتا ہے نا. رشیا کا جو نارتھ ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، ادھر کا جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور افریقہ کا جو باقی ایریا ہے مصر کے آگے کا، وہ اس میں شامل نہیں آتا نہیں ہوتا. یورپ اور یہ جو سارا کا سارا نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ ہے، یہ کچھ بھی اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بہت ہی مختصر سا ایریا ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اس کے اندر یہ بہت زبردست قسم کی پڑھی لکھی پڑھنے لکھنے والی سویلائزیشن موجود تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر یہ سب کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا رواج، وہ بھی یہودیوں میں ہی تھا جو کہ مدینہ آ کے سیٹل ہوئے تھے شام سے. ٹھیک ہے، تو ایسی قوم تھی، تو مخلوق خدا خدا سے نا آشنا ہو کر بت پرستی میں لگ گئی تھی. تو بت پرستی تو ہر جگہ ہی عام ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دوسری جگہوں میں بھی. تو ایسے زمانے میں ایسی قوم کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑے سخت قسم کے، سب ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم، پوری قوم کو کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے امیوں میں ان کے درمیان میں سے ہی ایک رسول بھیجا. یعنی پوری قوم کو ہی اللہ تعالیٰ نے امی قوم کہا، جن کو کہ پڑھنا لکھنا नहीं आता था, या जो है जो के बिल्कुल अन अफेक्टेड और अनटेंटेड किस्म के लोग थे, ठीक है, यानी दूसरी सिविलाइजेशंस ने इनके ऊपर अपना कोई गहरा असर नहीं डाला था। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो बड़े यानी अलग थलग किस्म के, अनअफेक्टेड किस्म के लोग थे। तो उम्मी का एक मतलब ये भी होता है, एक तो यही होता है कि अनलेटर्ड, पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग नहीं आती, लेकिन और भी मफहूम, हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने इसका ये मफहूम भी बयान किया है कि जिसके ऊपर असर यानी बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर वो थे। अच्छा, बिल्कुल प्योर से मुराद ये नहीं कि तौहीद पर थे, यानी असल प्योरिटी तो तौहीद है, नहीं, इतने भी प्योर नहीं थे, ठीक है, इतने भी प्योर नहीं थे, लेकिन कल्चर से अफेक्टेड नहीं थे, तो इस लिहाज से प्योरिटी की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला ने खुद पूरी कौम को ही उम्मी कौम कहा, और नबी अलैहि सलाम भी उम्मी ही बना करके इस कौम में भेजे गए, बट एक्सेप्शन वर देयर इन दिस कौम, यानी इस कौम में कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग मौजूद भी थे, जैसे उमर फारूक रतान और भी बहुत सहाबा का नाम आता है। तो ऐसे लोगों की इसलाह करना कोई आसान काम नहीं था, वो तो किसी को खातिर में नहीं लेकर के आते थे ना, वो तो इस तरह के लोग थे। ऐसे जाहिलियत के जमाने में ऐसी बिगड़ी हुई कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़े सुहबत और नूरे नबूवत से थोड़े ही अरसे में ये कौम सारी दुनिया के लिए इल्म, अमल, इखलाक, अखलाक बल्कि मुआमलात, मुआशरत और तमाम जिंदगी के शोबों में उस्ताद और काबिले तकलीद करार दी गई, या उस्ताद बन गए, जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक को अक्सीर बनाने वाले। बात क्या थी कि ना रोमा से ना ईरान से दबे, चंद बेतरबियत से ऊंटों के चराने वाले, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा ऊंटों के चराने वाले का जिक्र किस किसका आता है, उमर फारूक रज़ियल्लाहु कि वो तो खाली ऊंट चराया करते थे, और उसके ऊपर भी जो है वो अब्बा से डांट पड़ती थी कि उमर तुझे तो ऊंट भी चराने नहीं आते, तो उससे तो ये काम भी नहीं सही होता, ऐसी डांट पड़ा करती थी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने इस दीन को दुनिया में फैलाने का काम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही लिया, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को इसका वास्ता अल्लाह ताला ने बनाया, और आप को भी पूरा का पूरा क्रेडिट हम देते हैं, मखलूक में जब देखा जाए तो मखलूक में इसका क्रेडिट किसको जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम को, और पीछे खालिक, तो खालिक तो उसी ने नबी अलैहिस्सलाम की तख्लीक किया, और उसी ने जो है आप को ये फैज भी दिया और ये नूर भी दिया, ठीक है। कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं ना, तो कुरान मजीद में बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात आती है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की बात आई ना, तो शुरू कहां से हो रही है, हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मीयीन, वो जात है कि जिसने उम्मीयों के अंदर एक रसूल भेजा। अल्लाह का जिक्र है ना, अल्लज़ी किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ, ठीक है। लेकिन जब हम इंसानों की लिखी हुई किताब पढ़ते हैं ना, इंसानों की लिखी हुई किताब जैसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब, तो ये अल्लाह वालों की लिखी हुई किताबें होती हैं अक्सर, इनमें से सारी नहीं होती, लेकिन अक्सर जो सीरत की किताबें हैं वो अल्लाह वालों की लिखी हुई होती हैं। लेकिन इवन अल्लाह वाले भी जब किताब लिखते हैं ना, तो अल्लाह वाले भी अपनी किताब के अंदर अल्लाह का उतना तذकरा नहीं कर पाते कि जितना अल्लाह ने अपना तذकरा खुद किया है अपने कुरान के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये हम जो कुरान को अबैंडन कर कर करके बाकी चीजें कर रहे होते हैं ना, बाकी जराए से इल्म हासिल कर रहे होते हैं, तो हमारा फोकस जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हटना शुरू हो जाता है। ये लाजमी नतीजा होता है, ये लाजमी नतीजा होता है जब कुरान को छोड़ करके आप दूसरे जराए से इल्म हासिल करें, चाहे वो अल्लाह वालों की किताबें क्यों ना हो, ठीक है ना, तो फोकस कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह वालों की किताबों के अंदर अल्लाह का तذकरा जाहिर है दूसरी किताबों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कुरान के मुकाबले में ज्यादा नहीं हो सकता, कुरान के मुकाबले में ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुरान को नहीं छोड़ा जा सकता, कुरान मजीद को छोड़ करके दूसरे काम नहीं किए जा सकते कि भाई हम नेक बन जाएंगे, हम बड़े जबरदस्त दीनदार बन जाएंगे, हम बड़े अच्छे और अल्लाह वाले बन जाएंगे बगैर कुरान के, एब्सोल्यूटली नॉट। बिल्कुल, ये क्या कहते हैं वो हमारे हजरत बड़ा शेर पढ़ा करते थे ना, ई ख्यालस्त तो महालस्त तो जुनू, ये जो ख्याल है ना ये महाल है, बल्कि ये तो जुनून है, ये तो जुनू है। ठीक है, तो सीरत की किताबें पढ़ेंगे खाली, तो उसमें भी फोकस नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर होगा, अल्लाह का तज़किरा उतना नहीं मिलेगा। भाई हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम यहां पे किसी दूसरी किताब से कंपेयर नहीं करें कि नहीं, इनको तो क्या हो गया, ये तो अब सीरत की किताबों को भी तनकीद कर रहे हैं। ओ भाई हम कंपेयर कर रहे हैं कुरान से, हम किसी दूसरी किताब से कंपेयर नहीं करें कि उस किताब के मुकाबले में सीरत की किताब अच्छी नहीं है। ठीक है, मकसद क्या है कहने का, कुरान को नहीं छोड़ा जा सकता कुछ हो जाए। ठीक है, तो चाहे आप आलिम बन रहे हो, चाहे आलिमा बन रहे हो, चाहे आप बहुत बड़े पीएचडी स्कॉलर बन रहे हो, ये नहीं है कुरान मजीद का मामला, ऐसा नहीं है कि 8वें साल में पढ़ाया जाएगा कुरान मजीद। हदीस मुबारका की जो सहाय सित्ता की किताबें होती हैं वो 7 साल तक नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो 8वें साल में जाके पढ़ाई जाती है कि नहीं? ऐसा कितने आप में से हैं जिन्होंने किया है ना ये पूरा का पूरा कोर्स, सहाय सित्ता 8वें साल में जाके पढ़ाई जा रही होती है। कुरान का मामला ऐसा नहीं होता कि कुरान भी जो है वो माशाल्लाह बहुत आपको अरबी जुबान आ जाएगी और आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फनून आ जाएंगे और सब कुछ आ जाएगा, फिर उसके बाद कुरान मजीद पढ़ाएंगे। कुरान मजीद तो पहले ही साल से शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कोई छोटा कुरान मजीद शुरू नहीं होता, जैसे कि हदीस की जो है ना वो सबसे छोटी किताब शुरू की जाती है पहले साल में, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, पहले जो है वो रियाजुत तालिबीन शुरू होगी, फिर उसके बाद जो है रियाजुत सालिहीन शुरू होगी, फिर उसके बाद जो है वो मिश्कात शरीफ आते आते जो है वो 7वां साल पहुंच चुका होगा। ठीक है, नहीं, वो सिलेक्टेड हदीसें होती हैं, कुरान मजीद सिलेक्टेड नहीं पढ़ाया जाता। पहले साल के आलिम कोर्स में कुरान मजीद से सिलेक्टेड आयात नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि पूरा का पूरा 30वां पारा पढ़ाया जाता है, अनसेलेक्टेड पूरा का पूरा 30वां पारा, और फिर उसके बाद 9 पारे, और फिर उसके बाद 10 पारे, और उसके बाद फिर बाकी। ठीक है, तो कुरान मजीद को हमारे उलमा ने कभी भी नहीं छोड़ा है, हम भी ऐसी छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, वरना नुकसान हमारा अपना। अच्छा, तो ऐसे जमाने में ऐसी कौम की असलाह कोई आसान काम ना था, ऐसे जाहिलियत के जमाने में ऐसी बिगड़ी हुई कौम आप सजेंगे हवाले हुई, ये हम पढ़ चुके। अच्छा, तो जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत और आपकी पैगंबराना तालीम का तमाम अंबिया साबिकीन में अफजल और आला होना मुशाहदे से साबित हो गया। ठीक है, अब इमामुल अंबिया में तो कोई शक नहीं, नबी अलैहिस्सलाम को इमाम बना के भेजा, नबी अलैहिस्सलाम को अपना महबूब बनाया, बाकी किसी को खलील बनाया, किसी को कलीम बनाया, किसी को रूहुल्ला बनाया है, इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सबसे बड़ा मुकाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना। तो जो डॉक्टर किसी मायूसुल इलाज मरीज का इलाज करे, और वो भी ऐसी जगह में करे जहां तिब्बी आलात और दवाएं भी मफकूद हों। ठीक है, जो दीन है ना इसकी जो बेहतरीन सिमिलिट्यूड मिलता है, जो बेहतरीन इसकी जो मुशाबहत मादी दुनिया में मिलती है ना, वो ये इलाज मुआवजे का सिस्टम ही है। ठीक है, ये हेल्थ केयर जिसको कहते हैं अंग्रेजी, हेल्थ केयर सिस्टम, वो रूहानी हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम है दीन। और जो जिनको हम डॉक्टर कहते हैं वो जिस्मानी हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है, रूहानी हेल्थ केयर और जिस्मानी हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी जो चीज आपको वहां मिलेगी वही चीज आपको यहाँ भी मिलेगी, डॉक्टर वहां मिलेगा डॉक्टर यहाँ भी मिलेगा, दवा वहां मिलेगी दवा यहाँ भी मिलेगी, प्रिकॉशंस वहां मिलेंगी प्रिकॉशंस यहाँ भी मिलेंगी, फॉलो अप विजिट्स वहां मिलेंगे फॉलो अप विजिट्स यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, और जो वायरसेस एंड बैक्टीरिया वहां मिलेंगे, वायरसेस एंड बैक्टीरिया यहाँ भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, लेकिन एक चीज जिसमें 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती वो ये, चले आप बता दें किसमें नहीं होती, जब तक हम किसी ने मैसेज लिखा है तो वो हम पढ़ लेते हैं, एक चीज होती है जिसमें 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस यानी बिल्कुल सेम चीज नहीं होती, वो क्या? इन्होंने क्या लिखा कि जी मतलब सालिक को इब्तिदा में यकसुई के लिए सबसे बेहतरीन जरिया दरस कुरान ही है, फिर बात इनकी तरक्की पर शेख के हुक्म की तामील करना होगी जबकि वह हुक्म दे या मशवरे पर इजाजत दे। अब इतना तसव्वुफ को हर चीज में नहीं कंसिडर करें, दरस कुरान ईमान की इबादत के लिए एक कहफ है और बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बहुत बातें कर दी मैंने, मेरे ख्याल में वो काफी है। अब ये सालिक को यकसुई के लिए दरसो करानी अपनी तरफ से ना लेकर के आने चीजों में, यहाँ पे हम तसव्वुफ की बात नहीं कर रहे भाई। फीस नहीं, फीस का भी मामला ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मौलवी जो होते हैं ना, या शेख जो होते हैं, वो उनको मन्नो सलवा ऊपर से नहीं उतर रहा होता, तो फीस हो सकती है यहाँ पर भी। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा ऑपरेशंस, नहीं ऑपरेशन भी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, रूहानी इलाज के अंदर भी ऑपरेशन करना पड़ता है कभी जहां जरूरत पड़ती है, और जिस्मानी इलाज में भी ऑपरेशन करना पड़ता है जहां जरूरत पड़ती है, तो वो भी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो क्या नहीं है, क्या फर्क क्या है फिर? रिवॉर्ड नजर नहीं आता, रिवॉर्ड नजर नहीं आता यानी इलाज का जो है वो असर नजर नहीं आता, नहीं असर भी नजर आ जाता है, ठीक है। डॉक्टर पे एतमाद, ये भी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, और ये तो इन आयात में हमने पढ़ने, आगे जो आयात आ रही है ये सूरह माईदा की, तो उनके अंदर भी क्या है, एतमाद डॉक्टर के ऊपर, पहले एतमाद करना होगा बाद में इलाज होगा। तो उसी तरह जिस्मानी इलाज के अंदर भी पहले एतमाद करना होगा बाद में दवा का असर बाद में आएगा, राइट। ऑपरेशन का नतीजा बाद में मिलेगा, पहले तो अपने आप को हवाले करना पड़ेगा ना इलाज के लिए, ये भी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या चीज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है वैसे, ये बहुत बल्कि बहुत ही आसान सवाल है ये तो। रिलेशनशिप, ये क्या बात हुई रिलेशनशिप, डॉक्टर के साथ भी एक रिलेशनशिप होनी बहुत जरूरी होती है, बल्कि अदब आदाब भी, बल्कि किसी हमारे साथी हैं वो जो क्लास में भी होंगे, हाफिज साहब तारी, तारी साहब हसान साहब, तो उन्होंने भेजा भी था कि तबीब और उस्ताद दोनों की इज्जत और अदब भी करना पड़ता है, तब उनसे फायदा हासिल होता है। तो इज्जत और अदब, ये भी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्या चीज नहीं है, वो ये है कि जिस्मानी इलाज के लिए लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जिस्मानी इलाज के लिए लोग आसानी से तैयार हो जाते हैं, उनको फिक्र भी पड़ जाती है, और जो है वो अपने आप को पेश भी कर देते हैं, ठीक है। जबकि रूहानी इलाज के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, डॉक्टर को जतन करने पड़ते हैं, ठीक है। जिस्मानी इलाज के सिलसिले में डॉक्टर को कन्विंस करने के जतन नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है वो आगे पीछे थोड़ी बहुत बात कर देनी काफी होती है, या उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही जो है ना वो सिम्टम से परेशान होकर के भागा भागा आ जाता है, या घर वाले पकड़ के ले आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे डॉक्टर को जो है वो रुलना पड़ता है, रूहानी इलाज के अंदर डॉक्टर को रुलना पड़ता है मरीज, बल्कि जितना खतरनाक मरीज होगा उतना ज्यादा उसको कन्विंस करना मुश्किल काम है, जितना ज्यादा बीमार होगा रूहानी तौर पर उतना ज्यादा मुश्किल है उसको कन्विंस करना कि तुम बीमार हो भाई, अपना इलाज करवा लो, उतना ज्यादा मुश्किल है। और वहां पर जो है वो जो हल्का बीमार है उसको कन्विंस करना मुश्किल होगा, थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ जाए फिर खुद ही भागा भागा आएगा, और ज्यादा बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस में डाल करके लेकर के आएंगे, है कि नहीं, गलत कह रहा हूं, क्या ख्याल है? तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, अपने इलाज की फिक्र करनी चाहिए कि नहीं, रूहानी इलाज की, ठीक है ना। पता है ना सबको, माशाल्लाह मुसलमान हैं कि अगर गुनाहों के साथ दुनिया से चले गए तो फिर पता नहीं क्या होगा उसके बाद, पता नहीं, तो पता तो खैर है कि क्या होगा उसके बाद, है ना। या अगर गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला ने ईमान से महरूम कर दिया तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो मान जाना चाहिए। अच्छा, इलाज यहाँ भी खुद नहीं कर सकता, वहां भी खुद नहीं कर सकता, वहां भी डॉक्टर इलाज करता है, यहाँ भी डॉक्टर ही इलाज करता है, खुद से जो है ना वो कम से कम दर्जे का जो मरीज होता है उसका इलाज खुद से हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या लिखा, फॉर ईच फिजिकल प्रॉब्लम देयर इज अ सेपरेट डॉक्टर, बट फॉर ऑल रूहानी बीमारी देयर शुड बी वन शेख। ये बड़ा अच्छा वैसा आपने, लेकिन नहीं ठीक है, हाँ ये फर्क आपने अच्छा बताया कि वहां पे सारी रूहानी बीमारियों के लिए एक शेर जो है, लेकिन इसकी भी कॉरेस्पॉन्डेंस वन टू वन बन जाती है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी पीसीपी शेर होता है, उसको कहते हैं अमेरिका में प्राइमरी केयर फिजिशियन, वो भी शेर होता है पूरा का पूरा, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर वो भी PCP होता है, हेल्थ केयर शेफ होता है वो पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पर भी PCP शेफ जो होता है वो PCP होता है। हाँ ठीक है। तो अब जो है ना, ये डॉक्टर किसी मायूस और इलाज मरीज का इलाज करे, और ऐसी जगह में करे जहां तिब्बी आलात और दवाएं भी मफकूद हो, ठीक है, और फिर वो उसके इलाज में इतना कामयाब हो कि ये लबे दम मरीज, यानी जिसका के बस अब रूह निकलने ही वाली थी, इसके मुंह के रास्ते से रूह निकलती है, तो मुंह के रास्ते से रूह निकलने ही वाली थी, ना सिर्फ ये कि तंदुरुस्त हो गया बल्कि एक हाजिर और माहिर डॉक्टर भी बन गया, यानी मरीज खुद डॉक्टर बन गए। तो इस डॉक्टर के कमाल में किसी को क्या शुबा रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह तवील जमाने फतरत के बाद, जबकि हर तरफ कुफ्र व मासियत की जुल्मत ही जुल्मत छाई हुई थी, आपकी तालीमात और तरबियत ने ऐसा उजाला कर दिया कि इसकी नजीर किसी पिछले दौर में नजर नहीं आती। तो सारे मोजजात एक तरफ, तनहा ये मोजजा इंसान को आप पर ईमान लाने के लिए मजबूर कर सकता है, यानी नबी अलैहिस्सलाम पर कामिल एतमाद करना।
बहुत
इसी को ईमान कहते हैं, कामिल एतमाद करना नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जो बताई वो सच बताई और जैसी बताई वैसी ही है, ठीक है। इसी को ईमान कहते हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम के जो ऊपर ईमान लाते हैं वो तो मानते ही हैं, जानते ही हैं, लेकिन कितने ना ईमान लाने वाले भी जिनको ईमान की तौफीक तो ना हुई लेकिन कसीदे उन्होंने भी बहुत लिखे नबी अलैहिस्सलाम की शान में, ठीक है। तो मिसालें बड़ी, ये तो बल्कि मार्टिन लिंग्स तो शायद मुसलमान भी हो गया था, जिसने कि अभी बिल्कुल रिसेंटली अंग्रेजी जुबान के अंदर जो किताब लिखी है वो तो आलम बाद में मुसलमान भी हो गए थे, मार्टिन लिंग्स साहब। क्या जबरदस्त नबी अलैहिस्सलाम के, भाई सबसे ज्यादा जो दुनिया में तब्दीली लाए हैं ना, तो उसने मोसेस से कंपेयर, मूसा अलैहिस्सलाम से कंपेयर किया नबी अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम से भी आगे बढ़ कर नबी अलैहिस्सलाम जो जो मुसलमानों के प्रॉफिट हैं। अच्छा क्या लिखा, डॉक्टर टेल्स द पेशेंट एग्जैक्ट डिजीज, शेफ नोज बट डजंट टेल द पेशेंट। भाई इसलिए ना कि इतनी मुश्किल से आया है, रोल रोल करके तो आया है, और उधर से दूसरा शेख भी तो मौजूद है ना पीछे, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर टेल्स द पेशेंट एग्जैक्ट डिजीज, ठीक है, लेकिन शेख नोज इट बट डजंट टेल द पेशेंट। क्यों? इसलिए कि एक काउंटर शेख भी हमेशा मौजूद होता है जिसको शैतान कहते हैं, ठीक है। अगर ये मुंह पे बोल देगा ना, ये तो फौरन जाएगा शैतान की झोली में, जबकि फिजिकल डिजीज वाली जगह पर जाए ना, वहां पर वो कहेगा यार अच्छा हुआ मुझे बता दिया, आप जल्दी से मेरा इलाज करो। तो ये भी एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस में डिफरेंस है, लेकिन ये उसी से ही रिलेटेड है, उसी के जमन में आ जाती है जो कि आपके सामने साजिश ने रखी है, कि आते ही नहीं है। कौन नहीं आने देता? वो शेख ही तो नहीं आने देता, रूहानी इलाज करवाने के लिए कौन नहीं आने देता शेख के पास? जो दूसरा शेख है वही तो नहीं आने देता, इसी वजह से जो आता है ना बड़ी मुश्किल से, तो अब शेख को भी एहतियात करनी पड़ती है कि वापस उस वाले शेख के पास ना चला जाए, शेखे शैतान के पास, ठीक है। तो ये अच्छा, और क्या भी मैसेज आएंगे अभी इसमें जो है ना, ये क्लिक कर करके मैसेज देखने पड़ रहे हैं, पहले जो है वो एक ही स्क्रीन पे सारे मैसेज आ जाते थे। जिस्मानी इलाज में कोई एंटी फोर्स नहीं होती शैतान और नफ्स, इसलिए शायद रूहानी इलाज के लिए हमें इतना जतन करना पड़ता है। जी एग्जैक्टली, यहाँ पे नफ्स और शैतान नहीं होते जिस्मानी इलाज से रोकने वाले। वैसे शैतान का बस चले तो वो इंसान को जिस्मानी इलाज से भी रोके, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। जी ठीक है, तो ये हो गई ना आयत नंबर 19 के मारिफ व मसाइल। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि वकाल मूसा लिकौमिही, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, लिकौमिही या कौमी, ए मेरी कौम, उज़्कुरू याद करो, नेमतुल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे ऊपर जो हैं, इज जाला फीकुम अम्बिया, जब उसने बना दिया या कर दिया तुमको, जाला का तर्जुमा बना दिया कर दिया, ठीक है, फीकुम तुम में से अम्बिया, यानी तुम में से अम्बिया बना दिए, ठीक है ना। बनी इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद सारी की सारी, ठीक है। तो अब नबियों की औलाद तो थी, लेकिन हर बंदा तो उनमें से नबी नहीं बना ना, तो अल्लाह तआला ने किसी किसी को बनाया। वह जाएदा कुम्बलू का, और तुम सबको बादशाह बना दिया। माशाल्लाह, क्या बात है, तुम में से अंबिया बनाए लेकिन तुम सबको बादशाह बना दिया। जाएदा कुम, यहां पे नहीं फरमाया वह जाएदा फी कुम मलूका, नहीं, तुम में यानी सब बादशाह, माशाल्लाह बादशाह लोग, ठीक है। वो हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सऊदी अरब में ना, कि यहाँ पे सारे बादशाह लोग हैं, ठीक है। तो यही मामला जो है वो जमाने में बनी इसराइल का भी था, बादशाह लोग। वा आताकुम, और दिया तुमको, मालम युति अहदम मिन अल आलमी, जो नहीं दिया किसी एक को भी तमाम आलमीन में से, ठीक है। अब ये बनी इसराइल से यानी नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले की बात हो रही है, कि जब अल्लाह ताला ने उन लोगों से ऐसे कहा था, नबी अलैहिस्सलाम तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये माजी की बात हो रही है, कि अल्लाह ताला ने माजी में बनी इसराइल वालों को ऐसे कहा था कि हमने तुम्हें वो दिया जो किसी और को नहीं दिया गया था, लेकिन इस उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम दिए गए जो कि उनको भी नहीं दिए गए थे, कुरान दिया गया जो कि उनको भी नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये बाद में जाकर के ये वाला मामला हुआ। वह आता को मालम योति अहदम मिनल आलम, या कौमी, ए मेरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी कौम, जैसे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे ना, उम्मती, और कयामत के दिन फरमाएंगे उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। लेकिन हर नबी जो होता है ना, वो ऐसे ही अपनी उम्मत का खैर ख्वाह होता है, ठीक है। और उसके साथ वो ऐसे बात करता है कि जिससे कि अपनाइयत का एहसास, ए मेरे लोगों, ए मेरी उम्मत, ए मेरी कौम, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम से ऐसी फरमा रहे, या कौमी, ए मेरी कौम, उदखुलुल अर्दा, दाखिल हो जाओ जमीन के अंदर, कौन सी, अल मुकद्दसा, अर्दल मुकद्दसा यानी मुकद्दस जमीन के अंदर दाखिल हो जाओ, अल्लती कतब अल्लाहु लकुम, जो के तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दी है, इट हैज बिन रिटन फॉर यू, तय हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हें मिलना है वो वाली जमीन, ठीक है। वला तरतद्दू, और तुम इर्तिदाद ना करो, इर्तिदाद का मतलब क्या होता है, पलट जाना, फिर जाना, ठीक है। इर्तद्दा यरतद्दू, पीठ ना फेरो तुम, अला अदबारकुम, अपने पीठों के ऊपर, यानी तुम लोग पलट ना जाओ अपनी पीठों के ऊपर, पीठ फेरना ओवरऑल पूरा मुहावरा बनेगा, पीठ ना फेरो, ठीक है। दुबुर जो है वो बैक साइड को कहते हैं, तो अदबार उसकी जमा है, तो पीठ फेरना का मतलब उर्दू में यही मुहावरा इस्तेमाल किया जाता। फतनकलिबू खासरीन, फा फा का मतलब बस, उसके बाद क्या होगा, बस इमीडिएटली उसके बाद क्या होगा, अगर तुमने पीठ फेरी ना तो क्या होगा, तनकलिबू खासरीन, तो तुम पड़ जाओगे खसारे के अंदर, यानी तुम खासरीन बन जाओगे ना, ठीक है। गोया कि तुम पलट करके खासरीन बन जाओगे। अभी तो तुम बड़े माशाल्लाह मजे में हो ना, तुम्हारे ऊपर मन्नो सलवा भी उतर रहा था, और जो है वो तुम्हारी दूसरी ख्वाहिशात भी जो है वो पूरी की जा रही थी, और प्यास लगती थी तो तुम्हारे लिए चश्मे भी बन जाया करते थे ना? बड़े यानी बड़े मजे में तुम जिंदगी गुजार रहे हो यहाँ पर अभी, ठीक है। लेकिन अगर तुमने बात ना मानी ना, तो फिर क्या होगा, इमीडिएटली फौरन क्या हो जाएगा, तुम खासरीन बन जाओगे, ठीक है, यानी लूजर्स। सही, कालू, आगे से जवाब क्या देते हैं, या मूसा, ए मूसा, इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, उसके अंदर, फीहा, हा की जमीर किधर पॉइंट कर रही है, अल अर्द अल मुकद्दसा, वो जो मुकद्दस जमीन है ना, उसके अंदर तो है एक कौम जब्बारीन की। जब्बार किसको कहते हैं, अल्लाह ताला की सिफतों में से एक सिफत है अल जब्बार, जब्बार कहते हैं द वन हु प्रेसेस, जबर करना, जबर मतलब होता है प्रेस करना। इसी वजह से यहां पर आपने जो लॉन्ड्रीज देखी होंगे ना, जहां पे कपड़े को प्रेस भी किया जाता है, इस्त्री की जाती है, तो उसको भी जो है ना वो अल जबर लॉन्ड्री, के यहाँ पे बड़ी जबरदस्त तरीके से प्रेस किए जाते हैं आपके कपड़े, अल जबर, ठीक है। तो हड्डी भी टूट जाती है, तो उसको भी जोड़ने के लिए हड्डी को दबाना पड़ता है ना, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफत है ना अल जब्बार, ये बुरे मानी में नहीं है बल्कि टूटे हुओं को जोड़ देने का काम अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। इस वजह से अल्लाह की सिफत एक है अल जब्बार। लेकिन इंसानों के लिए जब ये लफ्ज इस्तेमाल होता है तो फिर ये बुरे मानों में इस्तेमाल होता है, यानी जुल्म और जबर करने वाला, ठीक है? क्योंकि ये जबर करना जो है ना, ये इंसानों को इसकी इजाजत नहीं है, जबर करो लोगों के ऊपर, तो इस वजह से बुरा मानी बन जाता है। अल्लाह के लिए यही लफ्ज है, वो अच्छे मानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो इंसान थे ना वहां पर जब्बार थे, यानी ये ठेंगे से आपने अपने ठेंगा रख करके किसी को दबा दे ना, या पैर रख करके दबा दे, वो बंदा तो मर जाएगा, ऐसे लोग थे वो। तो कहने लगे वो उसके अंदर तो ये कौम जब्बारी रहती है। वह इन्ना लन्नदुखला, और बेशक हम, इन्ना बेशक हम, लन लन से क्या होता है, ताकीद आ जाती है, एम्फेसिस आ जाता है, नदुखला हरगिज नहीं दाखिल होंगे उसके अंदर, उस मुकदस अदलती के अंदर, मुकदसा के अंदर हम हरगिज नहीं दाखिल होंगे, हत्ता यखरुजु मिन्हा, कंडीशन लगा रहे हैं, अंटिल एंड अनलेस, कंडीशन लगा रहे हैं। किसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं? अल्लाह के नबी के ऊपर, बल्कि अल्लाह के ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं, हत्ता के वो जब्बारीन वहां से निकल ना जाए, ठीक है? जाहिर है जब्बारीन के ऊपर तो कंडीशन नहीं लगा रहे, इनकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि जब्बारीन को जाकर कुछ बोलेंगे तुम निकल जाओगे फिर हम अंदर आएंगे, नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, फइन यखरुजु मिन्हा फइन्ना दाखिलून, इन इन शर्तिया होते हैं ना, शर्त लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, बस अगर वो खारिज हो गए उस अर्ज मुकदसा के अंदर से, फइन्ना दाखिलून, फिर हम दाखिल होंगे, शर्त लगा रहे हैं हुक्म मानने के लिए। और हुक्म भी नहीं, बल्कि कैसा हुक्म मिल रहा था उनको कि जिसके अंदर उनको खुशखबरी दी जा रही है, खुशखबरी दी जा रही है कि अल्लाह ताला ने वो जमीन तुम्हारे लिए लिख दी है, राइट? तो ये खुशखबरी नहीं थी और क्या, ये इनकी असल जमीन थी जहां से कि ये कहत वहत की वजह से ये फिर मिस्र आए थे, और मिस्र में आकर के बिलाखिर गुलाम बन गए थे अपनी हरकतों की वजह से, वरना तो अल्लाह ताला ने बादशाह अता फरमाई थी यूसुफ अलैहि सलाम को, लेकिन वही बदबख्ती कमबख्ती शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने फिर वही किया जो कि करते हैं अल्लाह ताला। जब तुम अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें जो है वो काफिरों के तहत कर दिया जाएगा, कॉलोनियल पावर आकर के टेक ओवर कर लेंगी तुम्हारे खजानों के ऊपर, ठीक है? तो फिर ये गुलाम बन गए थे। अब इनको वापस जाने के लिए खुशखबरी दी जा रही है कि अल्लाह ने लिख दिया उस जमीन को, लेकिन शर्त लगा रहे हैं, किस चीज की शर्त लगा रहे हैं, यानी किस चीज के ऊपर शर्त लगा रहे हैं, हम तो तुम्हारे वादे पर, तुम्हारी खुशखबरी के ऊपर उस वक्त एहतमाद करेंगे कि जब जो है ना हमें आंखों से मुश्किल टलती हुई नजर आ जाए, है ना? मुश्किल थी ना वो जब्बारीन का होना, तो वो हमें आंखों से टलते हुए नजर आ जाएं, तब हम तुम्हारे ऊपर एतमाद करेंगे, तुम्हारे वादे के ऊपर एतमाद करेंगे, शर्त लगा रहे हैं, ठीक है? हम ये सब क्यों कहानियां पढ़ रहे हैं उनकी? कहानियां नहीं पढ़ रहे हैं हम अपनी हिदायत के लिए, अपनी इबरत के लिए, अपनी इस्लाह के लिए ये पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि सभी पढ़ रहे होंगे इसी मकसद के लिए, ठीक है? तो हर हर लफ्ज जो है ना वो ये है कि हम वैसा ना करें जैसे कि बनी इसराइल ने किया था, और अगर कर रहे हैं अभी इसी वक्त उससे तौबा करें, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, मैंने बहुत गलत किया, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस हालत में मरना नहीं चाहता, है ना? खवातीन भी मौजूद हैं, मैं इस हालत में मरना नहीं चाहती कि मैंने आपके हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से शर्तें लगाई हुई, या आपके वादे पर एतमाद के लिए अपनी शर्तें लगाई हुई है कि पहले मेरी शर्त पूरी होगी फिर मैं आपके वादे के ऊपर एतमाद करूंगी, मैं इस हालत में अल्लाह मरना नहीं चाहती, आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? तब हमें फायदा होगा इस कुरान मजीद को पढ़ने का और इस कुरान मजीद की तफसीर को सीखने का, राइट? अच्छा, तो काला, उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, रजुलानी, दो मर्दों ने, दो रजुल ने, ठीक है? क्या लिखा उन्होंने, इन अ वे दे वर नॉट बिलीविंग द बशारत बट वेटिंग टू सी इट विद देयर आईज, दैट इज बिलीविंग ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक हाँ वही बात ना, एतमाद नहीं कर रहे थे ना, अपनी आंखों पर इनको एतमाद था कि जब तक हम अपनी आंखों से देखेंगे नहीं उनको निकलते हुए, या वहां पे सामने खड़े हो थोड़ी थे कि आंखों से देखेंगे, ये तो बहुत दूर थे वहां से, उनको अपने कानों पर एतमाद था। बल्कि हकीकत तो ये है कि कान भी इनके को थोड़ी थे कि वो जब वहां से, वो लोग जब बाहर वहां से निकलेंगे तो इनको आवाज दे के बताएंगे कि हाँ भाई हम निकल गए यहां से। नहीं, इनको मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा उन लोगों पर एतमाद था जो कि उनको खबर ला करके देंगे वहां से कि अब जब बाहर चले गए। एग्जैक्टली, बहुत काम की बात आपने करी है, अल्लाह आपको जजाए खैर अता फरमाए। इनको मीडिया पर एतमाद था, इनको खबरों पर एतमाद था। क्या हमें नहीं है खबरों पर एतमाद, मीडिया पर एतमाद, या नबी पर एतमाद है? अपने गिरेबान में झांक करके देखें, बड़े अल्लाह के वली बने फिरते हैं, वलियां बनी फिरती हैं, और इस्लाम को गालिब लाने वाले बने फिरते हैं, राइट? लेकिन क्या हमें अल्लाह के नबी पर एतमाद है, कि या हमें सोशल मीडिया के ऊपर, तो प्रिंट मीडिया के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, इनके ऊपर एतमाद है? एग्जैक्टली वही मामला है जो बनी इसराइल का मामला था। ना तो इन्होंने खुद जाकर के देखना था, ना तो उन्होंने खुद जाकर के उनकी आवाजों को सुनना था, यानी इतनी भी इनके नजदीक नबी की कदर नहीं थी कि जो बंदा उनको खबर ला करके देगा उसके मुकाबले में नबी के बात पे उससे ज्यादा एतमाद कर लें। खबरों पर एतमाद था। क्या ख्याल है, गलत कह रहा हूं? तौबा करने की जरूरत है कि नहीं है? तो फरमाया ये दो आदमियों ने कहा, इन दोनों में से, यानी इन इन लोगों में से, मिनल लजीना, उन लोगों में से जो के यखाफूना अन अमल्लाहु अलैहिमा, ठीक है, यखाफूना, जो के दोनों के दोनों डरते थे कि अब अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं, अन अमल्लाहु अलैहिमा, ठीक है, यानी ये लोग जो है ना वो डरते थे, खौफ रखने वाले थे, और ये उनके ऊपर अल्लाह ताला की नेमत थी। अन्नअमल्लाहु अलैहिमा, अल्लाह ताला ने उनको अपनी खशियत दे करके उन पर नेमत करी थी, राइट? अन्नअमल्लाहु अलैहिमा, तो उन दोनों ने क्या कहा, उदखुलू अलैहिमुल बाब, दाखिल हो जाओ तुम दरवाजे में, फइदा दखल तुम फइन्नकुम गालिबून, बस जैसे ही तुम दाखिल हो गए ना उसके अंदर, यानी बाब के अंदर, जो शहर का अर्दुल मुकद्दसा, मुकद्दसा का जो दरवाजा है, तुम जैसे ही उसमें दाखिल हो गए, इन्नकुम गालिबुन, ठीक है, इजा मुफाजातिया, इजा मुफाजातिया का मतलब कि इजा के बाद इसम आता है ना, ठीक है, तो वो इजा जो होता है वो फिर इमीडिएट के मानी देना शुरू कर देता है, इमीडिएटली, यानी जैसे ही ये होगा वैसे ही तुम गालिब आ जाओगे, ठीक है, वैसे ही तुम गालिब आ जाओगे। तो ये कौन लोग थे, अल्लाह से डरने वाले लोग थे, और ये बाद में इनको नबुवत भी मिली, यानी ये कोई मामूली लोग नहीं थे, और इन्होंने जो है ना वो खामखा में अपनी तरफ से ये कोई शोशा नहीं छोड़ दिया था कि एकदम से तुम गालिब आ जाओगे, बल्कि दे अंडरस्टूड द रियलिटी, ठीक है। तो यानी बनी इसराइल को इतना यानी समझाया जा रहा है कि भाई तुम्हें लड़ना वड़ना भी पर नहीं पड़ेगा, बिकॉज इजा के बाद जो इन्नहुम इन्नकुम गालिबून है, इससे तो यही पता चलता है ना कि भाई ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ खून बहाओगे और तुम्हें जो है वो कटना मरना पड़ेगा और बड़ी कुर्बानियां मेरे, उसके बाद कहीं जाकर के तुम्हें फतह मिल जाएगी, नहीं, बस दाखिल हो जाओ, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर फॉर यू, एवरीथिंग एल्स विल बी टेकन केयर फॉर यू, तुम बस हुक्म मान लो अल्लाह के बंदो, नबी की बात पे एतमाद कर लो अल्लाह के बंदो, वअला अल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, यानी नबी बोल रहे हैं, अब मानते थे ये लोग, नबी मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, ये मुसलमान लोग थे, ये काफिर नहीं थे, काफिरों से बात नहीं हो रही है कि तुम नबी की बात मान करके दाखिल हो जाओ, भाई ये मुसलमान थे, ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते थे, लेकिन तवक्कुल अल्लाह के ऊपर नहीं और एतमाद नहीं मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो ये उनको दुहाई दे रहे हैं, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मानने वाले हो, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो यार। खुदा के बंदो, अल्लाह के नबी से तुम्हारी बात हो रही है यहाँ पे। कालू, लेकिन आगे से जवाब दिया इन्होंने, या मूसा, ए मूसा, इन्ना लन्नदखुलहा, ऐसे जिद्दी लोग थे। फिर दोबारा कह रहे हैं, हम तो हरगिज नहीं इस अर्जुल मुकद्दसा के अंदर दाखिल होंगे, अबदन, कभी, यानी अबद तक दाखिल नहीं होंगे। मा दामू फीहा, जब तक ये लोग उसके अंदर बरकरार रहेंगे। मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो वो मस्जिद की तहियतुल मस्जिद की नियत क्या होती है कि मा दुम तु फीहा, के क्या है वो, मैं एतिकाफ की नियत, एतिकाफ की नियत करता हूँ, मा दुम तु फीहा, जब तक मैं इस मस्जिद के अंदर हूं। वही दामों का लफ्ज, ठीक है, कि जब तक ये इसके अंदर है ना, यानी उस वाले शहर के अंदर है, हम तो हरगिज हरगिज नवी नवी तो सुन्नत अल एतिकाफ है नहीं, वो मा दुम तु फीहा वाले जो अल्फाज थे वो मुझे याद आया है। तो मा दामू फीहा, जब तक ये उसके अंदर रहेंगे, फजहब अंता व रब्बु का फकातिला, नवे नई नवे तो एतिकाफा फी हाजर मस्जिद, मालूम तो किया भी उसमें सस्ता। बहरहाल होता है इस तरह के ब्लैंक भी उड़ाते हैं। अच्छा, तो वो रब्बू का फकातिला, तो इजहब अंता व रब्बू का माँ, हाँ माँ दुम तो फी हाजर मस्जिद, जजाकुम अल्लाह साहब, ठीक है, माँ दुम तो फी हाजल मस्जिद, ये वाली तो वो दुम तो उसे जो है वो दामों से दुम तो निकल आया। खैर, तो वो रब का फकातिला, पस तुम दोनों के दोनों जो है ना, यानी तुम भी जाओ और तुम्हारा रब भी जाए। कैसे ईमान वाले थे, अल्लाह अकबर कबीरा, ठीक है ना, यानी दावा ईमान का और सोच कितनी गंदी, राइट, सोच कितनी गंदी, जुबान से तो वही निकलता है ना जो जहन की सोच होती है, तो कितनी गंदी सोच थी इनके अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं तुम भी जाओ और तुम्हारा रब भी जाए, ये भी नहीं कह रहे कि तुम जाओ और तुम्हारा भाई जाए, थे ना दोनों मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, ये तक नहीं कहा इन्होंने कि तुम और तुम्हारे भाई जाओ। इतने बेअदब थे, इतने क्या बोले, बेगैरत भी बोलना चाहिए वैसे तो, ऐसे लोग थे कि अल्लाह को बीच में लेकर के आ रहे हैं और इस तरह की बात अल्लाह के बारे में कह रहे हैं। वो रब का कातिला, ऐसी तो नहीं अल्लाह ताला ने इनको मकदूब बना दिया ना, ठीक है, फकातिला, बस तुम दोनों जाकर के कत्ल करो, कदाल करो वहां पे जाकर के, इन्ना हा हुना कारिदून, हम तो इधर ही बैठे रहेंगे। काला रब्बी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ पलटे, ए मेरे रब, इन्नी ला अम्लिकु इल्ला नफ्सी व अखी, ए अल्लाह मेरा तो कोई मिल्क ही नहीं है, कोई मेरा तो बस ही नहीं चलता सिवाय मेरे अपने नफ्स के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नफ्स भी जो है वो नफ्स मुतमईना बन चुका है, आपने उसको नफ्स मुतमईना बना दिया, नफ्स मुतमईना जो है ना वो बात मानता है, दिल की बात मानता है, तो इस वजह से फरमा रहे हैं कि मेरा अपने नफ्स के ऊपर तो बस चलता है, क्योंकि मेरा नफ्स तो दुबक के कोने में बैठा हुआ है और दिल का जोर चलता है, मेरे मेरे वजूद के अंदर मेरे दिल का जोर चलता है, इस वजह से मेरा अपने नफ्स के ऊपर है मिल्क और मेरे भाई के ऊपर, मेरे भाई भी जो है उनका भी नफ्स मुतमईना बन चुका है, ठीक है, तो वो भी जो है वो बात मानने वाले हैं, बस आप जो है ना वो उफ्रुक बैनना, फर्क कर दीजिए, जुदाई डाल दीजिए हमारे और बैनल कौमिल फासिकीन, ऐसे फासिक लोगों के दरमियान, इस कौम फासिकीन के दरमियान जुदाई डाल दीजिए, ठीक है। तो अब जो उनमें फासिक थे, जाहिर है वो दो रजुलान तो फुसाफ में नहीं थे ना, हालांकि वो भी इसी कौम के फर्द थे, हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी इसी कौम के फर्द थे, लेकिन कौम अल फासिकीन से यहाँ पे फिर अल्लाह ताला को भी पता है ना कि कौन से वाले फासिकीन है और कौन से वाले फासिकीन नहीं है, ठीक है, लेकिन दिल अक्सर हुक्म कुल, अक्सर चूंकि फासिकीन थे तो इस वजह से उनको ऐसी उनका जिक्र किया जा रहा है जैसे कि सारे सारे फासिकीन है, हालांकि सब फासिकीन नहीं थे, इल्ला माशाल्लाह चंदों के। काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम, बस ये जो हा हा की जमीर वही बार बार लौट रही है अल अर्दुल मुकद्दसा की तरफ, तो ये जो अर्दुल मुकद्दसा है ना ये तो मुहर्रमा हो गई, यानी हराम कर दी इनके ऊपर, ठीक है, अलैहिम इनके ऊपर, 40 सना, 40 साल तक के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला के फैसले, अल्लाह ताला तो फिर जब नबी नबी जो है ना, ये असल में रहमत है ना, नबी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की जो रहमत है वो नबी के वास्ते से आती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी है कि हमारे दरमियान में से हमारा जैसा इंसान बना करके उनको भेजा। ठीक है ना, नरम दिल बनाया, खैर ख्वाह बनाया, हमारी जैसी सिफात दे करके भेजा, यानी आंख नाक कान, चलना फिरना, खाना पीना। ठीक है ना, तो नबी इज इजी कि नबी की बात मान लो, नबी के साथ, नबी यानी जिसको कहते हैं ना, जैसे हमारे अजीज बड़ा जबरदस्त उसकी जो कहते थे भाई, जैसे 5000 वोल्ट वॉट का या वोल्ट का जो है ना वो करंट आ रहा है, तो अब उसको जो क्या कहते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स नहीं, वो जो चीज लगी होती है जो कि वोल्ट उसको कम करती है ना, ट्रांसफॉर्मर। हाँ ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो ट्रांसफॉर्मर जो है ना, इतने बड़े इलेक्ट्रिक ह्यूज किस्म के करंट को ट्रांसफॉर्म करके हमारे इस्तेमाल के काबिल या हमारे फायदे के लिए बना देती है। अगर आप जो है वो अपने आप को जाकर के उससे करीब खड़ा करें, तो हजरत जी फरमाया करते थे, मुझे तो कुछ पता नहीं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का, फरमाते थे कि पूरे बंदे को वो खींच ले अपनी तरफ। ठीक है ना, इतना उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होती है और इतना जो है वो जलाने की उसके अंदर ताकत होती है। तो नबी आसानी के लिए अल्लाह ताला ने भेजे। अब जो नबी को ठुकराता है, अब क्या होगा भाई, अब डायरेक्ट उसका मसला अल्लाह ताला के साथ, अब निपटो तुम अल्लाह के साथ खुद ही, है ना। मैं तो तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मर बन करके आया था, काम को आसान करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था, अब नहीं मानते ना मेरी, जाओ अल्लाह अल्लाह के। हजरत जी यही फरमाया करते थे, जो बहुत ही इस किस्म की एटीट्यूड दिखाया करते थे, हजरत जी फरमाते थे अल्लाह के हवाले। वो कोई दुआ नहीं दे रहे होते थे अल्लाह के हवाले, वो तंग आकर के कह रहे होते थे अल्लाह के हवाले, अब अल्लाह से निपटो तुम खुद ही जाकर। शेख की बात मान लो यार, आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इन्होंने शेख की बात नहीं मानी, शेख तो नबी थे, जो नबी के उम्मती होते हैं, डायरेक्ट उम्मती होते हैं उनके लिए। तो फिर अल्लाह ने कहा चलो ठीक है, आई विल टेक मैटर्स इन माई ओन हैंड्स। ठीक है, चलो 40 साल तक रुलते रहो तुम यहां पर। यती हूं ना फिल अर्थ, यतीहून का मतलब लिटरली उर्दू में अगर हम करें तो रुलते रहो तुम। ठीक है, वॉन्डर अराउंड, कीप वॉन्डरिंग हियर। ठीक है, जैसे लेबरिंथ होता है या मेज होता है ना, आप जो है वो मेज के अंदर जाते हैं तो अब आप बाहर नहीं निकल सकते उसके अंदर से, तो ये मेज बना दिया अल्लाह ताला ने उस जमीन को इनके लिए। ठीक है, जब इसको, इस जगह को वादिय तीह भी कहते हैं, तीह तीह जो है ना ये मेज को कहते हैं, MAZE। ठीक है, तो अब तुम इसी तरह से चलते रहो उसके अंदर। फला तअसा अलल कौमिल फासिकीन, अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो आखिरी आयत है ना, बात तो आपने चंद के सामने ही हो चुकी है, इन्होंने क्या लिखा, अल्लाह वाज स्टिल वेरी काइंड विद देम दैट डिस्पाइट देयर हड हरामी अल्लाह ओनली पुट 40 इयर्स ऑन देम। जी अल्लाह ताला उनके साथ बहुत शफीक थे, 40 साल की उनको सजा मिली, लेकिन बिलाआखिर फिर उनको पता मिली गई हमेशा हमेशा की जहन्नुम में। उस वक्त तक उनको ऐसे नहीं किया गया, बस अब तुम सारे के सारे, जिस तरह कौम साले को हलाक कर दिया, कौम नूह को हलाक कर दिया, इनको उस वक्त भी हलाक नहीं। ठीक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि नरम दिल होता है ना अल्लाह का नबी, रहमत बना के भेजा होता है ना अल्लाह ताला ने, तो बहुत दुख हुआ, तो अल्लाह ताला फिर उनके दुख के ऊपर उनकी उनको तसल्ली दे रहे हैं, वला तअसअल कौम इन फासिकीन, इन फासिक लोगों की कौम के ऊपर आप अफसोस ना कीजिए। लेकिन ये भी रहमदिल बंदे के बस में नहीं होता कि वो अफसोस कैसे ना करें, तो बस वो अफसोस करते हैं, अल्लाह ताला को पसंद भी है कि मेरे बंदों की खैर ख्वाही तुम करते रहो, उनके लिए अफसोस करते रहो, लेकिन साथ साथ जो है वो याद दहानी भी कराते रहते हैं और आगे से जो है वो दिलासा भी देते रहते हैं। तो अलहमदुल्ला इन आयात के तर्जुमा मुकम्मल कर लिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों से हमने लिया, माजुर के साथ, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में थोड़ा सा तफसीर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला बात की समझ की तौफीक अता फरमाए और हम सबकी तौबा को अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम।